पक्षी की पतंग प्रकृति लख लख जोनियों में रहना बल्कि अच्छा है, गधे और शुकर की जोनी में भी रहना अच्छा है, किंतु कपटता का आश्रय मत करो। कपटता मैंने क्या, कपटता समझते हैं, कपटता ये भजन करना, राम हरे कृष्ण घोड़ी दिला दे राम हरे कृष्ण दिला दे राम, ये कपटता मत करो। माने क्या, किसी संसारी कभिलाषा की चेष्टा मत करो, जैसे हमको धन जन पुत्र परिवार और ये संसार में जो विषय हैं ये हमको मिल जाए, ये कपटता है। मुक्ति पाना, मुक्ति हम हरे कृष्ण कर रहे हैं उससे मुक्ति हो जाएगी संसार, अरे अजामी तो हो गया ना हमको भी हो जाए, ये कपटता है। क्या होना चाहिए, अंत और बार हमको कृष्ण प्रेम, ये होना निष्कपटता है। इसी के लिए हमारी सारी एनर्जी सब कुछ उसी के लिए है, कपटता है व्यक्ति का ही मंदिर जिसमें ये कपटता है। आजकल विभाग और पाप करते हैं, प्रचार करते हैं, क्या उद्देश्य, संसार ये कपटता हम लोग अंदर में कभी नहीं है। निष्कपट होकर के गुरु सेवा वैष्णव सेवा और भगवान की सेवा, उसके लिए और कुछ नहीं, कृष्ण ही प्रसन्न हो बस, मैं ऐसे योग्य हो जाऊं जो कृष्ण की और गुरु वैष्णव की सेवा आंतरिक रूप में कर सकूं। सरलता का दूसरा नाम ही वैष्णव है, जो सरल है वही वैष्णव, जो कि वैष्णव, किसी वैष्णव आया उसका आदर किया, किस लिए आदर किया, जाति कुछ लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ये कपड़ ऐसा अंदर में एक बार में एक ऐसा दो चीज नहीं रखा जाए, जो अंदर में चीज हो बाहर में वही चीज हो, ऐसा निष्पाप कपट व्यक्ति ही वैष्णव है। परमहंस वैष्णव दास बन सर, जो परमहंस वैष्णव है, कौन परमहंस वैष्णव, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सरल गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी और उनकी परंपरा, ये सब सरल गोस्वामी। सनातन गोस्वामी को चिंतामणि मिल गई या पारस पत्थर फेंक दिया बालू में कहीं, जहां भजन करते थे वहां पर फेंक दिया, 10-20 वर्ष हो गए उनको पता नहीं जैसे वहां पर रखा गया, और कोई आकर के शिव का भेजा हुआ व्यक्ति रुपए के लिए आया धन के लिए, उन्होंने कहा जाओ खुद वहां मिल गई, लेकर के बड़े आनंद से चढ़ा, फिर सोचता है ऐसी चिंतामणि को भी पारस पत्थर को भी जिस लोहा को स्पर्श करने से स्वयं हो जाता है, और इसको फेंक रखा, इसको कोई यूटिलाइज नहीं इसने किया, चलन था फिर गए उनके पास में, प्रजे प्रभु आपके पास न जाने कौन सी संपत्ति है जो ऐसे ऐसे पत्थरों को भी आपने प्रत्याग कर लेना है, लेना है जरूर, इस पत्थर को फेंको, पारस पत्थर को फेंकवा कान में क्लेन और मंत्र कृष्ण का गोपाल महामंत्र दे करो सब छोड़ कर, ये सब होता है इन वैष्णव के अनुगत्य में रहना ही परमहंस वैष्णव। ताई तहा सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण, जैसे यथार्थ ब्राह्मण वही है, चाहे जिस जाति के हो उसे कोई मतलब नहीं, विपरीत जीवों की, जीवों की विपरीत रुचि को संसारिक में उनकी फंसी हुई है रुचि, ऐसे लोगों की रुचि को परिवर्तन करके कृष्ण में लगा देना ही प्रचारकों का या गुरु का या वैष्णव का प्रधान कार्य। एक जीव की रुचि को परिवर्तन कर दिया जाए तो यदि महामाया के गुरु से एक व्यक्ति को भी तुम यदि बचा सको, उनकी वृत्ति को भगवान के तरफ में लगा सको, तो अनंत कोटि अस्पताल और शिक्षागार इनसे लाखों गुना श्रेष्ठ है, एक जीव की वृत्ति लगा दे, ये सबसे बड़ा उपकार है। भगवान और भक्तों की सेवा करने से ही जितने प्रकार की अनर्थ है ये सब दूर होंगे, गृहव्रत छूट जाएगा, गृहव्रत मैंने क्या, संसार के प्रति जो आसक्ति है ये छूट जाएगी। कृष्णेतर विषयों को संग्रह करना ही हमारी मूल व्याधि, हमारी मूल व्याधि मतलब रोग क्या है, रोग क्या है, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त तो दूसरी वस्तुओं को ग्रहण करना, कृष्णेतर विषयों का संग्रह करना ही हमारे मूल व्याधि है, क्योंकि उसमें आसक्ति है, जब ये छूट जाएगी कैसे छूटेगी, कृष्ण में जितनी रुचि आती है कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति जितनी प्रगाढ़ से प्रगाढ़तम होगी ये रोग अपने आप दूगा और दूसरे किसी भी उपाय से नहीं जा सकता। हम लोग इस जगत में काठ और पत्थर के मिस्त्री होने के लिए नहीं आए हैं, चैतन्य देव के वाणी के मात्र पीयून हैं, संदेश बाहर हम और कुछ नहीं। मैंने दिन होकर के अपने होगा जैसे डाकिया डाकिया बाज पत्र और रुपए पैसे बांट देता है, उसका एक छदाम भी नहीं रखता अपने लिए, यदि होता तो वो दंड करने का होती है। इसी तरह से हम लोग भी चैतन्य महापुरुष के वाणी के पीयून मात्र हैं। गुरु का अभिमान कभी नहीं आए, मैं वैष्णव होगा इसका अभिमान कभी नहीं आने पाए। हम जगत में अधिक दिन नहीं रहेंगे, हरि कीर्तन करते करते हमारा देह पात हो जाने से ही हमारे देह की धारण की साक्षात होता है। यदि हरि भजन करते हुए हरे कृष्ण करते हुए कृष्ण की चिंता करते हुए यदि हम लोगों ने इस शरीर को छोड़ दिया तो जीवन की सफलता अन्यथा बेकार का हो गया। इसलिए जगत में नहीं अधिक दिन रहना है, मौलसी और पट्टा और चिरस्थायी व्यवस्था नहीं होगी। अंत पाते हैं चैतन्य देव की मनोभीष्ट, चैतन्य देव के मनोभीष्ट संस्थापक रूप गोस्वामी की चरण की धूलि ही हमारे जीवन का एकमात्र आकांक्षा का वस्तु है, ये जीवन में हमारा सिद्ध होना चाहिए। क्या अंतिम रूप गोस्वामी की महाप्रभु के मनोभीष्ट संस्थापक श्री रूप गोस्वामी की चरण धूलि ही हमारे जीवन की एकमात्र आकांक्षा। माने क्या वो कहां मिलेगी, कहां मिलेगी, ले जाएंगे वहां नंदगांव में, वृंदावन में चले जाएंगे, शिवापुरी में या राधा दामोदर मंदिर में जाओ, वो तो वहां पर थे ना, तो वहां की चरण धूली अभी तक तो होगी, वहां पर ले लेंगे। इतना सहज मत समझो, चरण धूली है ये उनके विचारों को जो जगत में देने के लिए, उन विचारों की जो धूली कड़ा है उसको स्पर्श करो, ये नहीं अन्यथा किसी वैष्णव को उठाकर पटक दिया जबरदस्ती को चरण की धूली नहीं दे रहे, दस्ता मस्ती करके उनके चरण की धूली को ले लिया और अपने शरीर में रख रहे हैं, जैसे कि प्रसाद पा रहे हैं वैष्णव लोग और वो प्रसाद मांगने नहीं दे रहे हैं तो वो थाला समेत उठा लिया और सबके देखते देखते खा लिया, ये सब देने का उनके विचारों की जो कणिकाएं हैं उसको यदि संग्रहण करके ग्रहण कर लिया। हमारे नर जी के जीवन में उन्होंने क्या लिया, उनका उच्छिष्ट लिया, अरे भाई विचारों का भी उच्छिष्ट लिया, ये मुझ कह चीज उनके विचारों के लिए निमंत्रण दे गए, उसमें प्रतिष्ठित कर गए, यदि ये है तो ठीक है, नहीं तो देखो जो प्रभुपाद जब थे, प्रभुपाद को सोने के ग्लास में एक बार कोई अच्छा सा शरबत बना करके दिए तो प्रभुपाद ने होठों से स्पर्श करके और एक शिष्य को दे दिया, उसने सबसे बड़ा प्यारा है सबसे, और उन्हें गर्व के मारे अब पूरा नहीं सुनाया जो प्रसाद ने हमको ये सोने के ग्लास का लेकर के और सबके सामने बड़े प्रसन्न होकर हुआ क्या कुछ दिन के बाद हमने उनको देखा कहाँ भक्ति और कहाँ वो एकदम प्रसाद, इन्हें विचारों को ग्रहण करना चाहिए, झूठे से ही नहीं काम चलता, विचारों का उच्छिष्ट यदि कोई ग्रहण कर सके तो वो सौभाग्य माने, इसी को लक्ष्य करना चाहिए। स्थूल में मत जाओ, यद्यपि स्थूल में भी कुछ क्रिया है किंतु भीतर में अंतरंग भावना को लेना चाहिए। तो गोस्वामी का विचार क्या था, भक्ति स्वामी सुंदर लिखा वो नहीं, उनका अपना क्या विचार था, वो तो सब विचार उन्होंने दिया सब एक तरह से, उनका अपना जो विचार क्या था ये उनका महाप्रभु के कृष्ण के प्रति राधा जी के प्रति कैसी भावना थी, उनकी सेवा अंतरंग सेवा ना क्या थी ये देखना है। इस तरह से उनके चरणों की सातवीं बज गया, बहुत अधिक हो गया, मैं सो जाते साढ़े छह में छोड़ दूंगा, ये भाग गया मैं इधर उधर, आज यही तक रहे प्रभुपाद जी आप सब लोगों के ऊपर कृपा करें और जगत में कुछ ही चीज के प्रति उद्देश्य न करके ऐसी शुद्धा भक्ति की तरफ में हम लोग आ गए, अपना जीवन इसी में इसी यज्ञ में संकीर्तन यज्ञ में।
पहले श्रील प्रभुपाद के कुछ उपदेश, उसके बाद चैतन्य चरितामृत के बारे में जो प्रवचन इसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है।
नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुः प्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनयः तं सर्वभूतं तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञराजे तं नयमाम चरणान्तिके। चरितामृत अंत दिव्या 15 परिच्छेद। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में बैठ करके क्या करते थे इसका वर्णन दे रहे हैं। ये साधारण चीज नहीं है, ये बद्धि भक्ति के अंतर्गत भी नहीं है, ये राधा जी इस भाव को लेकर के आए। कृष्णचंद्र राधा जी के जिस भाव को लेकर के आए थे उसमें दो चीजें थी। एक तो स्वयं राधा जी का भाव आस्वादन, राधा भाव से कृष्ण के माधुर्यों का आस्वादन करना, और राधा जी का प्रणय कैसा है और उन माधुर्यों को आस्वादन करके क्या उनको आनंद, कैसे आनंद होता है राधा जी के मन को, इन तीन चीजों के लिए तो राधा भाव है। और उसमें से कुछ छींटे बहुत, उसके छींट एक बहुत दूर तक जाने वाली, वो जीवों पर करुणा करके उस प्रेम की एक छींट जीव को देना चाहते हैं, वही है अनर्पित चरण चिरा। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु अपने भाव में है, सची पुत्र के रूप में, सन्यासी के रूप में, और सर्वत्र नाम का प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया। वहां पर कृष्ण भाव और राधा भाव में से कोई भी नहीं है। साधारण रूप में कृष्ण नाम का प्रचार कर रहे हैं और जगत दासियों को जो जैसा है, बड़े बड़े विद्वान हैं, दार्शनिक है, उनको दार्शनिक तत्वों के द्वारा पराभूत करके आकर्षण कर रहे हैं नाम के और प्रेम को देने में। जो साधारण व्यक्ति है उनको केवल नाम दे रहे हैं और उसके माध्यम से प्रेम दे रहे हैं। तत्वदर्शी जो लोग हैं उनको तत्व के माध्यम से उनको ले आकर के अपने उसको प्रेम को दे रहे हैं। जो जैसा है वैसा ही कर रहे हैं। तो उस समय में नवदीप लीला के अधिकांश भाग में या दक्षिण के प्रचार इत्यादि में रामानंद के प्रसंग को छोड़ करके और बाकी जो समस्त देश के वासियों को वैष्णव कर दिया, इसमें चैतन्य महाप्रभु बाह्यतः जैसे हैं सची के पुत्र सन्यासी हैं इस रूप में वो दिए। कहीं कहीं राधा जी की दासी की स्फूर्ति उनमें होती है, उस समय में जब होती है तब वो जीवों पर करुणा करके वो प्रेम धन देते हैं,
अनर्थिकारी में खीरा। और ऐसे स्थलों में जहाँ राधा जी का अभिमान हो रहा है वहाँ पर उस प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं, राधा जी का प्रणय तथा उनके माधुरियों का आस्वादन, और उनका आस्वादन का कैसे आनंद उनको होता है इस चीज को, राधा जी के भाव को आस्वादन। यहाँ पर राधा जी के किंकरी का भी मान नहीं, राधा जी का स्वयं अभिमान है। यहाँ पर पहले लिखा कृष्ण वियोगे राधा उत्कंठित मौन, विशाखा के कहे आपने उत्कंठा का, विशाखा को कौन कह सकता है, राधा जी का अतिरिक्त विशाखा को और ललिता को कोई कह सकता है अपने भावों को? तो यहाँ पर कोई साधारणी गोपी अपने मन को भाव विशाखा जी से बतला रहे हैं, इसलिए यहाँ किसका प्रसंग है, ये राधा जी के भाव में उन्मत्त है। उद्घृणा किस अवस्था में होता है, महाभाव की स्थिति वो भी रूढ़ भाव, तो समझो कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु अधिरूढ़ भाव में उपस्थित होकर के और कृष्ण के वियोग जनित भावों को यहाँ दिखला करके राधा प्रेम की भावना को आस्वादन कर रहे। कृष्ण का वियोग, राधा उत्कंठित मन, राधा जी का उत्कंठित मन कैसे, श्रीमती जी नंदगांव में पहुंचे, रास्ते में कृष्ण का मिलन हुआ, कृष्ण को देख करके अपने हार इत्यादि को तोड़ करके पीछे से देख रहे हैं, कितने कितने भाव हैं, दोनों दूसरों के प्रति आकर्षित हो रहे, स्वप्नों के साथ में यशोदा जी के वन में जाकर के मैया यशोदा जी का चरण बंदन करती है और यशोदा जी के आंख छल छला जाती हैं और अपनी अपने बेटे के समान उनको अंत में भाग्य। स्तव स्तुति में भी देखा जाता है कि यशोदा कहते हैं तू हमारे कृष्ण जैसा हमारा प्यारा है, तू भी हमारी प्यारी,
कृष्णवत प्रेम बात्री,
अतः आशीर्वाद देती है और फिर रोणी के कर्म में उनको समर्पित कर देती है, कहते हैं कि हमारे घर में सारे भंडार हैं, रोहिणी जी इसकी सबकी व्यवस्था करेंगी, देख और रसोई बनाएगी, ये बेटी बनाएगी, बनाती हैं रसोई। जो राधा जी कृष्ण के विरह में ऐसे उत्पन्न होती हैं, ये ठंडी चीज भी चुरमुर कर जाती है, जैसे गंधे इत्यादि, कमल के पत्ते इत्यादि, आज यहाँ पर 20-25 चूल्हे जल रहे हों, यहाँ कितने चूल्हे जल रहे हैं और उसमें लकड़ी भी जा रही है, चारों तरफ से ताप है और इनको ये सब ताप सुशीतल लग रहा है कृष्ण के मिलन से। तो शरीर बन जाने के बाद में रोणी मैया ने यशोदा जी ने सब लोगों को सखाओं के सहित कृष्ण को बुलाया, धनिष्ठा जी ने बड़ी चतुराई से कृष्ण का अवशिष्ट दिया, उन्होंने कहा जैसे ये जो प्रसाद दिया है ठाकुर जी को जो भोग लगाया है कृष्ण के भोजन के अतिरिक्त वाला, ये तुम श्रीमती राधिका जी को दे दो और उनको अच्छी तरह से खिलाना और सब सब सबंध दे करके, सौगंध दे करके, सौगंध में शपथ दे करके ये उनको खिलाने के लिए कहा, किंतु वो नहीं खाएंगे जब तक कि कृष्ण का उसमें विशिष्ट नहीं। वो झट चतुराई से श्रीमती कनिष्ठा जी बड़ी चतुराई के साथ में कृष्ण के जो अच्छे अच्छे जो पदार्थ दिए गए हैं उनको चतुराई से निकाल करके उसके अंदर भी मिला देती हैं, जो किसी को मालूम नहीं ये अलग से वो है और वो उनके पास में भिजवा देती हैं, वो भी खाते हैं, दोनों का मिलन होता है। कृष्ण अब गोचारण के लिए चले, कुर्बान चले गए, वहाँ जाकर के गोचारण इत्यादि, और इधर में कृष्ण को विदा करने के बाद में यशोदा आनंद इत्यादि लौट आए, सखियाँ भी लौट आई, किसी प्रकार से अब विरह इनको नहीं सहा जाता, किसी प्रकार से जाओ अब वो कोई बहाना बनाती हैं कि हम उससे दर्शन करते, और उसी समय में इतनी विरह में तप्त हो जाती हैं कि विशाखा जी से और ललिता जी से देखा नहीं जाता, तो वो रूपमंजरी को भेज देती है कृष्ण को देखने के लिए किस स्थिति में कहाँ और कैसे हैं। और ये बड़ी चतुराई से जाकर के उनसे मिलती हैं और उत्कंठा देखती हैं, ये उनसे इनकी मिलने की उत्कंठा की गई है और नहीं, और जगाती हैं उत्कंठा, जगाने के बाद में वहाँ से आती हैं। तो ये कृष्ण का मिलना बड़ा कठिन है, इनकी अब परीक्षा लेते हुए वहाँ पर कृष्ण की परीक्षा लिया हुआ यहाँ पर। ये जो वियोग का समय है, इतनी उत्कंठा जी उनको है जिसका वर्णन करना शब्दों में संभव कर रहे, इसी को यहाँ पर कृष्ण के लिए राधा दोपहर का समय कृष्ण गोवर्धन की तराई में गायों को चरा रहे, पासी में किसी प्रकार से उनके रूपमंजरी से मिला, उन्होंने इंगित से कुछ ऐसी चीज की जिसे कि ये प्रतीक हो, उन्होंने कमल की कोई माला उनको लेकर के उनको दे दिया, यही उनको दे दिया। कमल का फूल का मिलना मैंने, कमल की माला का मिलना मैंने, जब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ देकर के भेज दिया, ये पहुँच गए। और इसी के बीच में इतनी उत्कंठित हैं जो उनसे रहा नहीं जाता, तो यही विशाखा जी को अपनी उत्कंठा का कारण ये बतला रहे हैं उसी समय। अभी जावट की बात है, शेष लोग पढ़िए आपने, पढ़े मनस्ता श्लोक अर्थ सुनाए गोहन कर गया विशा बिला, श्लोक अपने आप पाठ करते हैं और उसको सुना रहे हैं, उसका अर्थ बतला रहे हैं, चैतन्य महापुरुष स्वयं इसका अर्थ कर रहे हैं। श्लोक ये है, सौंदा जामित सिंधु भंग ललना चित्त अदृशम प्लावक कर्णानंदी सनर्म रम्य वचन कोटिंदु सीतांगद सौरभ्यामृत संप्लाव आपृत जगत पीयूष रम्याधर श्री गोविंद्र सुत सपर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि आली में हे आली हे सखी विशाखा जी। सौंदर्यामृत सिंधु, पहले इस श्लोक, यह श्लोक कहाँ से आया, और यह श्लोक है गोविंद लीला, तो इसके रचयिता कौन है, नहीं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनसे 100 वर्ष बाद में आए, 100 बाद। और महाप्रभु वहां पर बैठे हुए कैसे वो बतला रहे हैं इस श्लोक को, ये कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का उच्चारण किया, इसलिए ये उनका अपना नहीं है, ये समझो मूलतः ये चैतन्य महाप्रभु के मुख से राधा भाव में अविष्ट होकर के कहा। अब उसी को स्वरूप दामोदर जी अपनी कर्चे में लिख लिया और वो कर्चा रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, और उन्होंने ये कर्चा उनको सुनाया, तब गोविंद लीलामृत की रचना हुई, उसमें ये श्लोक, ऐसे समझो इस चीज को, नहीं तो ये संभव पर नहीं था। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहने श्री चैतन्य महापुरुष से मुख से निकला हुआ ये श्लोक है, इसलिए 8 श्लोक तो वो हैं, और एक इसको भी रख लो, और एक श्लोक और है, ये सब महाप्रभु जी के मुख से निकले हुए हैं। यहाँ पर यद्यपि यहाँ पर लिखा हुआ जो गोविंद लीलामृत का श्लोक है, किंतु इसको इसी रूप में समझो चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में पहले ये सब नामोदर राय रामानंद को गंभीरा में ये बातें कह करके उसका अर्थ स्वयं कर। लीलामृत वर्णन करने का या श्लोक का अर्थ प्रकाश करना या व्याख्या करने की शैली इन्होंने कहां से प्राप्त की? रघुनाथ दास गोस्वामी से सीखी। जहां जहां वो रघुनाथ दास जी ने कहां से सीखा? महाप्रभु से स्वयं जी सर्व दामोदर जी इनको बतला रहे हैं, बड़े आश्चर्यचकित होकर के बतला रहे हैं। देखो आज ऐसे हुआ, आज वो श्लोक इन्होंने ये पाठ किया और उसका इतना सुंदर अर्थ किया जिसको वो लोग जगत में कल्पना नहीं कर सकते। कौन कह रहा है? सर्व दामोदर। और रघुनाथ दास गोस्वामी को पिला रहे हैं उस अमृत को। सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चित्तादृशम प्लावक। पहले श्लोकों का अर्थ समझो। देखो सौंदर्यामृत सिंधु, कृष्ण के सौंदर्य का सौंदर्य जो है वो अमृत का समुद्र है। समुद्र पास में खड़े हुए पर्वत को उसके चरणों को स्पर्श करता है समुद्र का पानी। यदि हिमालय जैसा पहाड़ भी उसके पास में खड़ा हो तो ये क्या करेगा? समुद्र का पानी तरंगे उछल कूद करके उसके चरणों को धो करके बस वहीं से शांत होकर के लौट जाए। किंतु यहां पर कह रहे हैं भंग लल्ला चित अदृशम प्लावक। ऐसा ये अमृत सिंधु है, भंग माने तरंग, उसके तरंगे बड़ी जोर से उछल रही है। उछल करके क्या करती हैं? साधारण समुद्र की तरंगे पर्वत के दोष को बहुत करेंगे और कृष्ण का सौंदर्य आधुनिक में जो तरंगे होती हैं उसकी एक बूंद भी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा कल जब बताया, एक बिंदु क्या करता है? बड़े बड़े पर्वत को एकदम डुबो देता है और उसकी रग रग में अपने पानी को पहुंचा देता है। यह समुद्र का पानी किसी पर्वत के अंदर में नहीं जाएगा, किंतु वो पानी क्या करता है?
पर्वत
जहां भी पर्वत के अंदर में कोई भी छिद्र है, कोई भी जगह है, कहां वन प्रांत घास पास जो कुछ है अंदर बाहर सर्व, और ये क्या करता है? पर्वत के बाहरी प्रदेश को चरण को स्पर्श भोग करके नीचे चला जाता है। अब वो पर्वत क्या है? इधर तो समुद्र का जल, इधर तो हुआ हिमालय इत्यादि या और जो पर्वत है या पूर्वी पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ियां दक्षिण में, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट ये पहाड़ियां हैं। मद्रास के साइड में एक और बॉम्बे के साइड में उत्तर में वो क्यों पहाड़ियां हैं? सिलसिला चला गया, तरंगे आती हैं नीचे से धोकर के पहुंचे। पहाड़ अचल अटल अटल रहता है, वो ठीक अपनी अचल रहता है, टस से मस नहीं होगा, बहुत ऊंचा कभी भी हिलने वाला नहीं, डोलने वाला स्थिर, उसकी जड़ें बहुत मजबूत, उसके शिखर को छुपाना उसको डुबा देना ये समुद्र के लिए कठिन है। अब इसको तुलनामूलक दृष्टि से हम अब कृष्ण पर लाए। कृष्ण का रूप आदि जो माधुर्य है वो जो अमृत का सिंधु है उसमें तरंगे इस समुद्र से कोटि गुण ऊंची उठती हैं और ये उस पर्वत के शिखर को भी अपने अंक में समा लेती है और रग रग में प्रवेश कर उसको जल में बना देती है। अब ये पर्वत क्या है? ये तो कृष्ण का रूप तो हुआ अमृत का समुद्र और ये समुद्र की तरंगे भी उस रस रूप के से जो चित्त में आने वाली जो भाव है उसकी तरंगे है। पर्वत क्या है? नारी चित्त का है, नारी मैंने क्या है? गोपियां और दूसरे नारी नहीं, इनका प्रतिपत्ति धर्म अरुंधति और अनुसुईया इत्यादि से भी ऊंची है। अत्रि की पत्नी अनसुईया जी और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, इनका प्रातिपत्य जगत में जाहिर है। सीता जी का भी पातिपत्य, ये सब लोग हैं। किंतु गोपियां जो हैं ब्रज की, इनका जो पातिव्रत धर्म है वो हिमालय के ऊपर से भी इन लोगों को भी पार करता हुआ बहुत ऊंचा है। इन लोगों का भी जो पातिव्रत धर्म है, अरुंधति और अनुसुईया का, ये पातिव्रत ठीक नहीं है। क्यों? इनका चित्त कृष्ण में और अपने पति में भी है। वशिष्ठ जी और अत्रि ऋषि में भी इनका अपने अपने पतियों के प्रति, या कृष्ण के प्रति या राम के प्रति भी है, और अपने धर्म के प्रति भी है, लोक लज्जा के प्रति भी है, ये सब इनमें है। और गोपियों का पातिव्रत कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं, अटल। और अटल कहां तक उसकी जड़ है कोई ठीक नहीं, और कभी भी हिलने वाली नहीं है। इसलिए अरुंधति और अत्रि की अनुसुईया इत्यादि इनकी पातिव्रत धर्म की वांछा करती है, अभिलाषा रखती है। इसलिए गोपियों का जो धैर्य, गोपियों का पातिव्रत धर्म, उनकी लज्जा, ये एक एक शिखर है। जैसे हिमालय पर्वत में बहुत से शिखर है, गौरी शंकर, एवरेस्ट और कौन कौन कितनी ये चोटियां हैं, ऐसे गोपियों की ये सब चोटियां हैं। क्या किसी भी अपने धर्म से भी विचलित नहीं हो सकते। ये एवरेस्ट की चोटी है और धर्म को भी नहीं छोड़ सकती, इस तरह से ये अटल है और बहुत ऊंची है। किंतु फिर भी कृष्ण का यह रूपी जो समुद्र है, उसकी एक तरंग से ये चूरमार हो करके समुद्र में वो चूर जाए, इसलिए उसकी तुलना दी। तो इसलिए सौंदर्याम्रत सिंधु भंग ललना चित्त, ललनाओं का चित्त जो है वो कैसा है, अत्रि पहाड़ के समान। ललना मैंने सभी एक से एक, ये सभी इतनी 360 प्रकार की गोपियां हैं, एक एक ये क्या है,
शिखा,
और इनमें 8 शिखाएं चारों तरफ से बड़ी बड़ी ऊंची हैं, और इन 8 शिखाओं के बीच में एक जो है श्रीमती राधिका जी, वो तुंग है, उसकी सीमा नहीं कि कितनी ऊंची है। किंतु समुद्र की एक कण आकर के, तरंगों की एक कण ऐसी प्रबल है कि उस सबको डुबा, उसी तरंगों को भी डुबा देती है। उसी को ये कह रही है विशाखा जी से, सखी हमारा धैर्य, हमारा व्रत, लज्जा, ये सब कहाँ चली गई, एक क्षण में ध्वंस हो जाती है, उसमें डूब जाता है कृष्ण को। संप्लावक उसको भी सम्यक रूपेण प्लावक, एकदम उसको डुबा देती है। डुबा देना संप्लावता माने क्या, उसमें जितना ऊपर से नीचे है पानी में डूब करके पानी ही जैसा हो गया, उसके रग रग में पानी भर दिया, ये है। कर्णानंदी नर्म रम्य वचन कोट इंदु शीतांगद, दूसरा हुआ कर्णानंदी स नर्म वचन, कर्ण को आनंद देने, मेरे कर्णों को आनंद देने वाली, उनके परिहासमय नम्र और कोमल चित्त को लाभ आनंद देने वाले ऐसे कृष्ण के वचन हैं। कोई भी स्त्री अपने, यानी कोई मैंने गोपियों के लिए कारण है, अपने सतीत्व को एक सेकंड के लिए भी नहीं रख सकती, लोक लज्जा को भी नहीं रख सकती, धैर्य उनका च्युत हो जाता है। रूप जैसा है और वैसे ही शक्ति इनकी बोली में है, इतना मधुर, बंशी मधुर से मधुर है, किंतु कृष्ण की मुख से निकली हुई जो वाणी है प्रिय, ये कितना प्रेम से निकला हुआ है, परिहासमय वचन कैसा, कहाँ की रहने, तुम कौन है, यहाँ आ गई? तो उधर से उत्तर आता है, तुम जानते नहीं? तो जब जानता तो पूछता क्यों? तो तुम जानते नहीं जैसे मैं कौन हूं? राधा जी जैसे करें मधुर वाणी से कृष्ण का चित्त टूट गया, और कृष्ण इतने मधुर रूप से कह रहे हैं, न जाने क्या इसमें रस का समुद्र, अमृत का समुद्र उमड़ रहा है उस वाणी में। इन्होंने कहा जैसे तुम नहीं जानते, तो मैं जानता हूं कि ये तू चोर है, बस ये जानता हूं। हमारे बगीचे को तुमने चौपट कर दिया राउंड का, और जितने अच्छे अच्छे फूल है तुमने चुरा लिया, और ये तुम्हारी सखियों ने चुरा लिया। हाँ, आज परम धार्मिक को मैं देख रही हूं जो सामने है, कैसे परम, बचपन से ही परम धार्मिक। कृष्ण कहता है अच्छा, बचपन से मैंने क्या कर दिया, अधार्मिक हो गया, तुम बड़ी भारी धार्मिक हो। धार्मिक इसलिए कहा जे जन्मते ही
नाली को बात,
पूतना के प्राणों को आपने चोरी कर, और ऐसा कोई ब्रज में घर नहीं जहां पर कि आपकी यश कीर्ति और धार्मिक भाव न व्यक्त हो, ऐसे आप धार्मिक परम धार्मिक। और इससे पेट नहीं भरा तो स्त्रियों की लड़कियों की कपड़े को चुरा लिया, ये तो और भी उन्नत धर्म, और इससे परम धर्म। और ये समस्त ब्रज की लड़कियों को बुला करके राश किया, ये तो आपकी परम धर्म, उसका धर्म इत्यादि सब चौपट करना ही आपका धर्म इत्यादि, जो परस्पर की जो बातें हैं। ऐसे ही सनर्म रम्य वचन करणानंदी, और कैसा सनर्म परिहास युक्त परम मधुर परम आनंद में, एक एक बात ऐसी सुंदर सुंदर सर जो कृष्ण को आनंद से भर देती है, या राधा जी को या गोपियों को आनंद से भर देती है। राधा जी कहती हैं ये ललिते ऐसा उपाय करो, ये धूर्त महाशय जी बड़े अपने को बलवान समझते हैं, इसलिए पौरुषी लीला में पुरुषों के जो कार्य हैं उसमें तो हम लोग को जीत लेते हैं, अब ऐसा कोई बात करो जिससे इनको अपने फंदे में डाल करके हम लोग इनको जीत सकें। कह जी तब चुटकी बजाते हो जाएगा, तो कैसे, तभी पाशा का खेल आरम्भ कर दो। बस पाशा का खेल, जब कृष्ण हार जाते हैं राधा जी कहती हैं ये चारणों जो ग्वारिये होते हैं उनका काम नहीं है,
गवारों का काम नहीं,
गैये के पीछे पीछे लटिया लेकर के चलो और उनके गोबर दे करके इधर उधर घूमो, यहाँ पर बुद्धिमानों का काम है, यहाँ पर आपकी अकल नहीं चलेगी। उस समय मधुमंगल इत्यादि और कृष्ण की जो बातें हैं ऐसे परिहास युक्त होती हैं, उसको कहते हैं जी करणानंदी, हम लोगों के ही मन में इतना आनंद देता है तो कृष्ण के लिए तो बात ही क्या। इसलिए करणानंदी कहो तो कृष्ण के लिए करणानंदी या राधा जी के लिए करणानंदी, यहाँ पर राधा जी का प्रसंग है इसलिए राधा जी के कर्णों में आनंद बढ़ाने वाला नर्म सनर्म रम्य वचन गोपिया करती है। श्लोक अच्छे राज पंचाध्याय का एक शीश का रहस्यम प्रिय प्रेम वीक्षण विहरण चमे ध्यान मंगलम रहस्य संविदम या हृदय स्पिश कुहुक नौ मन ये सब कैसे करणानंदी, ये सब विषय ये सब रम्य वचन है। तो कृष्ण यदि किसी कोई सुने ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कोई भावुक भक्त भी भाव की स्थिति में कृष्ण का रूप देखा और मूर्छित हो गया, तो कृष्ण आकर के मुरली लिए हुए उसके पास में बैठ जाते हैं और कहते हैं उठो 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 सखा उठो या सखी उठो, उनकी बात को सुन करके जग उठता है और फिर उस बातों की चिंता करते माधुर तक फिर उचित हो जाए, और फिर कृष्ण स्पर्श करते हैं कोमल
सुकुमार जी,
और वो फिर उठ करके देखता है, फिर उनके सुकुमार भाव को देख करके पूछित हो जाता है। इस तरह से कृष्ण की पांचों प्रकार की जो पांच प्रकार के रस है उसे साधक पिकल हो जाता है, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा सुनता है। और यहाँ पर मुश्किल है एक चीज, एक ही समय में समस्त इंद्रिया कृष्ण के इन पांचों रसों में एकदम जुड़ जाती है, आकर्षित हो जाती है। इसलिए मन रूपी एक घोड़ा क्या करे, उसी को ये आगे बतलाएं। तो ये रम्य वचन ये क्या करते हैं, गोपेंद्र सुतः सकरसती, गोपेंद्र नंदन के ये पांचों खेच रहे हैं किसको, हमारे मन को। कोटिंदु सुशीतांग का कोटिंदु करोड़ों करोड़ों चंद्र की सुशीतता को पराभूत करने वाले कृष्ण के अंगों की जो शीतलता है, इतना स्निग्ध, इतना सुशीतल और उसमें सुगंध भी, ये साधक के चित्त को तो बात क्या, राधा जी के चित्त को भी प्लावित कर देता है। प्लावित करके क्या करता है, पातिव्रत धर्म चुटकी में चला गया, लज्जा कहां चली गई, लोक लज्जा धर्म कर्म सब सौरभ्या मृत संप्लवा अवृत जगत पीयूषम पीयूषरम्याधर। कृष्ण के अदरामृत का वर्णन कर रहे हैं, सौरभ्य, सौरभ्य किसको कहते हैं, सौरभ्यामृत संप्लवावृत सौगंध, नासिका को सौरभ्य, कृष्ण के अंगों की ऐसी सुंदर सुगंध है, जब कभी भी जैसे कि उद्धव गए ब्रज में, कोई कहती है जैसे ये कौन है, श्याम है किंतु श्याम नहीं है, किंतु सही कहते मैं जानती हूँ ये कौन है, कृष्ण का दूत है। कैसे समझ लिए कृष्ण का दूत है, कृष्ण के अंगों का उतरा हुआ ये माला और उनके कपड़े सब पहन करके आया है, यहाँ देखने से तो भूल हो जाएगी, हो सकता है कि वैसा दूसरे का हो, किंतु एक चीज है जो कभी भूल नहीं कर सकती, ये नाक भूल नहीं कर सकती, क्या नहीं भूल कर सकती, इस फूलों में जो सुगंध आ रही है वो फूलों के सुगंध को भी पराभूत कर, प्रोड़ीभूत कर कृष्ण के अंगों का सुगंध आ रहा है, कृष्ण ने इसको धारण किया होगा, नहीं तो ये सुगंध इसमें आ नहीं सकती, इसलिए कृष्ण के दूत को छोड़ करके वो भी प्रिय दूत होगा तब, इसलिए कृष्ण के अंगों का ये सुगंध यहाँ पर है, इसलिए ये दूसरा को इसको दूसरे को नहीं मिल सकती, इसलिए कृष्ण का दूत। राधा जी कृष्ण के द्वारका जाने पर सोच रहे हैं, विरह में होते 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 ऐसे प्रलंब की स्थिति पहुंची कि उनको यह भ्रम हुआ ये कृष्ण द्वार आ गए हैं, भूल गई जी वो द्वारका गए, कहीं छिप रहे थे और उनके सामने आए। सामने आने पर राधा जी देखती हैं कि उनका कोई आंख बंद कर, कहती हैं पहले तो ललिता विशाखा, फिर मुस्कुरा उठती हैं उसी विरह में, और मुस्कुरा कर कहते मैं समझ गई, कैसे समझ गई, अरे ये तो कृष्ण के अंगों का ये गंध आ रहा, इसलिए जरूर कृष्ण है, तुम ही ये आर्य हैं या लंपट हैं, अरे वही चोर है, ऐसे कुछ कर। तो कृष्ण को समझाए पहुंचाने के लिए ये अंगों का नासिका का घ्राण ऐसा जिसको आदमी को पागल बना देता है, गोपियों को पागल बना देता है, और इस पागलपन के कारण उनका जितना पातिव्रत लोक धर्म लज्जा शील जो कुछ है, गुरुजनों को सामने देख करके भी लज्जा करना, ये भी सब ये है उनका गंध सौरभ्यामृत, अमृत को भी पराभूत करने वाला, या सुगंध में जो कुछ सुगंध है उस सबको पराभूत करने वाला, ऐसा कृष्ण के अंगों का ये सौरभ्य माने सुगंध है। और आवृत संप्लवावृत जगत पीयूष पीयूष्य माधव अधर पीयूष पीयूषरम अधर, कृष्ण का ये मुखारविंद का जो अधर अमृत है वो कैसा है, इतना अमृत है वो, ये पीयूष को भी कोटि कोटि बार पराभूत कर दे। पीयूष से अधिक कोई अधिक सुस्वादु चीज नहीं है इस विश्व में, किंतु एक कण के द्वारा उसके समस्त माधुर्य को ये पराभूत कर देने वाली कृष्ण की अधरामृत है, जो कि सब गोपियों के इन भावों को जो पहले बतलाया उनको क्षण मात्र में बुला करके एकदम कृष्ण के इन पांच प्रकार की जो माधुरियां हैं उसका समुद्र है उसमें इनको आचूल डुबा दे। गोपेंद्र श्री गोपेंद्र सुत सब कर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणी आदि में बलात् आकर्षति, बलपूर्वक आकर्षण करते हैं। अब इसका चैतन्य महाप्रभु जो अर्थ कर रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के ही अर्थ का ये जो मैंने सूचना दी, शब्द स्पर्श सौरभ ध्याता रहस्य जार माधुर्य कहन न जाए, देखी लो भी पंचजन एक अश्व मोर मन चढ़ पंच पांच दिव्य धारा,